मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 15 मई 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं एक बहुत ही ताजी घटना का जिक्र करने जा रहा हूं और उस ताजी घटना के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं इनफैक्ट कह क्या रहा हूं। थोड़ा सा आप ही अपनी तरफ से समझने की कोशिश कीजिए तो वो शायद ज्यादा बेहतर होगा। इनफैक्ट मैं घटना का विवरण थोड़ा सा विस्तार से दूंगा और इसके लिए मैं शुरू में ही आपको बता देता हूं और माफी भी मांग लेता हूं, क्योंकि जनरली होता यह है कि जब आप घटनाओं की चर्चा बहुत ही संक्षिप्त रूप में करते हैं तो संदर्भ छोटे पड़ जाते हैं या घटना जो है वो संदर्भ से अलग हो जाती है, लेकिन जब आप उनकी बारीकियों की चर्चा करने लगते हैं, घटनाओं को विस्तार से बताने लगते हैं, तो फिर होता यह है कि उस घटना जो आखिरी में घटित हो रही है, निष्कर्ष तो किसी भी घटना का अंत में निकलता है, तो वो जो निष्कर्ष निकला है उसके पूरे संदर्भ आपको मिल जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट आपको मिल जाते हैं। और याद रखिए कि संदर्भ को जाने बिना कभी भी सत्य को जाना नहीं जा सकता, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप चाहें तो आप इसे नोट कर लें कि जब तक आपको उस घटना का जो घटित हुआ है उसके पूरे संदर्भ नहीं मालूम है कि ये जो घटना घटी है उस समय की स्थिति क्या थी, संदर्भ को आप स्थिति कह लीजिए, उस समय इनफैक्ट स्थिति क्या थी, किन स्थितियों में ये निर्णय लिया गया, किन स्थितियों में ये घटना घटित हुई, जब तक हमें उसकी जानकारी नहीं होगी तब तक केवल निष्कर्ष के आधार पर कि उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, और उसी को पकड़ करके और हम अपना जजमेंट पास कर दें कि यार ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, और वो बहुत भला आदमी है, वो तो बहुत बुरा आदमी है, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ज्यादा अच्छा है कि यदि आपको संदर्भ नहीं मालूम है, केवल घटना मालूम है, तो चुप रहिए, अपनी तरफ से कोई वक्तव्य मत दीजिए। और अगर कोई वक्तव्य के लिए मजबूर आपको कर रहा है तो उसे कहिए कि भैया मुझे तो पहले सब कुछ बताओ कि ये घटना ठीक है, ऐसी घटित हुई, लेकिन पूरा का पूरा माहौल क्या था, इसका कारण क्या रहा, सारी चीजें तो मुझे विस्तार से बताओ, तब मैं अपना कुछ अपनी बात आपको बता सकूंगा, कुछ कह सकूंगा, अदरवाइज मुझे चुप ही रहने दो। तो मित्रों, इसलिए खासकर ये भी समझ लीजिए कि एक लाइफ मैनेजमेंट का ही पार्ट था जो मैंने घटना की चर्चा आपसे की। कभी हम लोग इस पर बहुत अच्छे से बात करेंगे, ऐतिहासिक संदर्भों में बात करेंगे, आपको मजा आएगा और आप देखेंगे कि चीजों को देखने और समझने की दृष्टि आपकी केवल इसी के कारण कितनी बदल गई है और आप सत्य के ज्यादा निकट पहुंच जाएंगे। और सत्य के आप अगर निकट पहुंच गए तो मित्रों मान करके चलिए कि जिंदगी बिल्कुल आपकी लहलहा उठेगी, फिर आपकी चिंता परेशानियां 90% तो दूर हो जाएंगे और 10% तो रहेंगे ही रहेंगे, उसको तो हमें पार्ट ऑफ लाइफ मान के चलना चाहिए। तो मित्रों आइए अब मैं घटना पर आता हूं। घटना कुल मिलाकर के ये है कि अभी मेरे एक परिचित हैं, मेरे मित्र भी हैं, सुनील मिश्र जी, उनको नेशनल फिल्म क्रिटिक अवार्ड मिला, नेशनल फिल्म क्रिटिक अवार्ड। आपने न्यूज में सुना होगा कि कुछ दिनों पहले ही विज्ञान भवन में राष्ट्रपति जी ने वह अवार्ड दिया था और उस अवार्ड के देने को लेकर के कुछ विवाद भी हो गया था कि राष्ट्रपति जी ने कुछ लोगों को दिया, बाद में कुछ लोगों को दूसरे हमारी मंत्री ने जी ने दिया, तो उसको लेकर के विवाद हुआ था, आपको ध्यान होगा। तो वो भी अवार्ड लेने गए थे, तो जब अवार्ड की घोषणा हुई और अवार्ड उन्हें मिल गया तो मेरी पत्नी की इच्छा थी कि चूंकि उन्हें नेशनल अवार्ड मिला है और वो आपके मित्र रहे हैं और इतने लंबे समय से आपके इतने परिचित अच्छे परिचित हैं, तो उनके सम्मान में एक भोज दिया जाए, रात्रि भोज दिया जाए। मुझे ये पसंद आया और हम लोगों ने फिर एक यहां एक ऑफिसर्स क्लब अरेरा क्लब है उसमें रात्रि भोज का इंतजाम किया। केवल 15-16 मित्रों को जो बहुत ही निकट के थे उनको बुलाया गया और उसमें हम लोगों ने यह भी कहा सुनील मिश्र जी से कि आप अपने परिचित मित्र को भी ले आइएगा, जो भी आपके 2-3-4 अगर आपके परिचित हैं जिन्हें आप बहुत अच्छा निकट का मित्र समझते हैं और आपकी इस पूरी की पूरी यात्रा में आपके सहभागी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, तो बेहतर है कि आप उन्हें लेकर के आ जाएं। तो मित्र वो अपने एक मित्र को लेकर आए, 2-3 मित्र उनके थे, 3 या 4 मित्र थे और उसमें से एक से मुझे परिचय तो सबसे ही कराया। अब मैं एक मित्र की विशेष बात आपको बताने जा रहा हूं और वही सच पूछे तो हमारी इस घटना के केंद्र में है, राइट। तो उन्होंने मित्र से परिचय कराते हुए कहा कि सर ये फलाने फलाने हैं और ये हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं, हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं, और आप देखिए कि इनके माथे पर अभी भी टीका लगा हुआ है। और यहां पार्टी में आने से पहले, पार्टी नहीं कहना चाहिए, रात्रि भोज कहना चाहिए, है ना, पार्टी में तो थोड़ा सा अलग तरह का इमेज, अलग तरह की इमेज बनती है। और रात्रि भोज आने से पहले इन्होंने बकायदे 1-1.5 घंटे हनुमान की आराधना की है। देखिए इनके माथे पर टीका भी लगा हुआ है, मैंने देखा कि वास्तव में टीका लगा हुआ था। और ये परिचय कराने के बाद उन्होंने कहा कि सर ये जो आपकी किताब आई है सदा सफल हनुमान, उसको बहुत दिन से ये पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत दिनों से ये उसकी तलाश में है, उसकी खोज में है, और ये हनुमान के भक्त हैं, ये किताब उनको चाहिए। मैंने कहा कि ठीक है, वो किताब मिल जाएगी, और मैंने करके चलिए ये बात खत्म हो गई। यानी ये एक छोटी सी घटना मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल में जानबूझ करके बताई है। अब मैं चाहूंगा मित्रों कि इस घटना का आप सब थोड़ा अपने अपने ढंग से मूल्यांकन कीजिए, और किस चीज का मूल्यांकन, कि वो हनुमान भक्त हैं। ये बात मैं इसलिए कह, अब थोड़ी सी मैं और चीजें आपको कंटेंट बता देता हूं कि सदा सफल हनुमान जो मेरी किताब है ये सन 2004 में छपकर आई थी, और ये जिस घटना की मैं चर्चा कर रहा हूं ये 2018 के मई महीने की घटना है, राइट, 2004 से 2018, 14 साल। वो भी भोपाल में रहते हैं, मैं भी भोपाल में रहता हूं, हम दोनों के घर की दूरी मुश्किल से 6 किलोमीटर होगी, 5-6 किलोमीटर होगी, राइट। भोपाल की कोई ऐसी किताब की दुकान नहीं होगी, मैं टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जनरल बुक्स होती है, जहां ये किताब अवेलेबल ना हो। सदा सफल हनुमान किताब हर दुकान पर अवेलेबल है। दूसरी बात यह कि इस किताब को आप लोगों का कुछ इतना प्यार मिला कि कई कई भाषाओं में छपकर आ चुकी है, ये पंजाबी में छप चुकी है, गुजराती में छप चुकी है, इंग्लिश में छप चुकी है, और कई भाषाओं में, इस तरह से कई भाषाओं में ये किताब छप चुकी है। बहुत ही पॉपुलर किताब है, मतलब ये किताब इतनी पॉपुलर है कि लोग इसको बल्क में मंगा करके, थोक में मंगा करके और बांटते हैं। जैसे कुछ ही दिनों पहले की घटना, 1 महीने पहले की घटना है कि हमारे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हैं त्रिवेंद्र रावत जी, उन्होंने इसकी 500 कॉपी मंगाई, और उन्होंने एक सम्मेलन सा किया था लोगों से जनसंवाद के लिए, तो उन्होंने उनको लगा कि ये किताब उसमें आए हुए सभी प्रतिनिधियों को देनी चाहिए, और वैसे भी उनके पास जो भी गेस्ट आते हैं तो उसके लिए वो किताब मंगा करके रखी हुई है, वो उन्हें ये किताब देते हैं। मतलब मैं एक किताब की लोकप्रियता बता रहा हूं। इस पर जी जागरण में बकायदे 60 एपिसोड आ चुके हैं जो मुझ पर ही फिल्माए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस किताब को बहुत प्रसिद्धि मिली है। जब ये किताब शुरू शुरू में आई थी तो इसके पब्लिशर ने भोपाल में इसका एक बहुत बड़ा आयोजन किया था, इसके मतलब विमोचन के रूप में बहुत बड़ा आयोजन किया था। देखिए ये जो मैं बात कह रहा हूं वो सिर्फ ये बताने के लिए कह रहा हूं कि ये अननोन बुक नहीं है, ये गुमनामी में खोई हुई किताब नहीं है कि भी किसी को मालूम होगा तो ठीक है, नहीं मालूम होगा तो भी ठीक है। ये बहुत ही वेल नोन किताब है, बहुत ही लोकप्रिय किताब है, राइट। अब इन दोनों को आप एक दूसरे के आमने सामने रख दीजिए, बस मित्रों यहीं से आपको जीवन का संदेश निकलेगा। देखिए मेरा मतलब किताब से नहीं है, मेरा मतलब हनुमान जी की भक्ति से भी नहीं है। अगर हनुमान जी के प्रति मेरी उतनी श्रद्धा नहीं रही होती तो मैं ये किताब नहीं लिखता। मैं ना भक्ति पर सवाल उठा रहा हूं और मैं किसी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं केवल आप लोगों को घटनाएं दे रहा हूं, और इन घटनाओं के संदर्भ में हम जीवन को देखेंगे। हम धर्म को नहीं देख रहे हैं, हनुमान जी को भी नहीं देख रहे हैं, हम किताब को भी नहीं देख रहे हैं, ये मैं जीवन को देखने की बात कह रहा हूं। अब मेरा जो परिचय कराया गया वो इस रूप में कराया गया कि हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए देखिए किताब तो आप किसी भी रूप में पसंद कर सकते हैं, जिन्होंने भी ये किताब पढ़ी है जरूरी नहीं कि वो सबके सब हनुमान भक्त ही रहे हो, नॉट एट ऑल। बुक तो बुक होती, किताब तो किताब होती, बेसिकली उसमें जीवन के प्रबंधन की बात बताई गई है, मैनेजमेंट की बात कही गई है, उसमें भक्ति और धर्म जैसी कोई चीज उस तरह से है ही नहीं। इसी को शायद लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद भी किया कि कैसे धार्मिक प्रसंगों को जीवन के सीधे सीधे यथार्थ से जोड़ा जा सकता है, राइट। यहां जो मेरा सवाल है कि अगर आप इस किताब के पढ़ने की अपनी जिज्ञासा को, इच्छा को हनुमान की भक्ति से जोड़ रहे हैं तो फिर वो कर्म कहां गया, कर्म का आपको अभाव दिखाई दे रहा है कि सच में अगर वो ईमानदार जिज्ञासा आपके अंदर है कि वो किताब मुझे पढ़नी ही चाहिए, तो फिर आप मेरे जो दूसरे संदर्भ है उनको देख लीजिए। ये किताब अननोन नहीं है, घर की दूरी 5 किलोमीटर है, बहुत हर की किताब ये जो है हर दुकान पर उपलब्ध है, आप कहीं से भी ले सकते थे, कहीं से भी ले सकते थे और लेके पढ़ सकते थे। कीमत भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 125-150 रुपए की कीमत है। और अगर किसी इतनी प्रबलता है, इच्छा की अगर इतनी प्रबलता है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। और आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, मतलब सिविल सर्वेंट, गवर्नमेंट सरकार में नौकरी कर रहे हैं। मित्रों, मैं उन पर आरोप भी नहीं लगा रहा हूं। देखिए, मुझे इस बात के लिए आप बिल्कुल कहने की इजाजत दीजिए, मैं उनकी समीक्षा भी नहीं कर रहा हूं, मैं आरोप भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैं केवल एक छोटा सा टुकड़ा, घटना का एक छोटा सा टुकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूं, केवल इस इच्छा से, इस उद्देश्य से कि आप सब इसका विश्लेषण कीजिए। और इस विश्लेषण में बस ईमानदारी को ढूंढिए, ईमानदारी को ढूंढिए कि जो हम कहते हैं कि हम ये हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो जो हम कह रहे हैं और जो चाह रहे हैं, उसके प्रति हम सच में कितने ईमानदार हैं। और अगर वह ईमानदारी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे चाहने में खोट है, कहीं हमारे करने में खोट है। तो बेहतर है कि हम कहें ही नहीं, बस मेरा केवल यह कहना है। तो जब हम अपने को टटोलेंगे, तब हम सही मायने में अपनी ईमानदारी को समझ पाएंगे। अदरवाइज तो हम सब अपनी ईमानदारी का आप कह लीजिए कि ढिंढोरा पीटते ही पीटते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपना कभी न कभी मूल्यांकन भी करना चाहिए, और तटस्थ और निर्मम मूल्यांकन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक मैंने घटना आपको सुनाई है, और मैं चाहूंगा कि इस घटना पर आप लोग विचार करें और मुझे अपने अपने विचारों से अवगत भी कराएं। वक्त हो चला है, अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।